व्यक्ति जो देव आत्मा रूप में थी उसके सिर के पीछे प्रकाश का ताज था, जैसे देवताओं के सिर के पीछे दिखाते हैं, हर एक के सिर के पीछे प्रकाश का ताज था। हर नर देव रूप में था, मानव महामानव के रूप में था। एक बार किसी यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम में जाना हुआ था, हमारी दादी जी गए थे, तो उस समय लाल बहादुर शास्त्री जी प्राइम मिनिस्टर थे, कुछ समय रहे वो, तो उसने उस यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया, तो हमारी बहनों को बुलाया था, बड़ी दादी जी गए थे, तो बड़ी दादी से वो मिला तो उसने कहा कि आज तक कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं बनी है जहां मानव को महामानव बनाया जाए, मानव को डॉक्टर इंजीनियर बैरिस्टर वकील ये वो सब यूनिवर्सिटीज में बनते रहते हैं, MBA न जाने क्या क्या डिग्रीज पास करते हैं यूनिवर्सिटी से, लेकिन मानव महामानव बन जाए ऐसी कोई यूनिवर्सिटी है? तो दादी जी ने उनको कहा कि है, और वो ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। तो उसने कहा अच्छा, यानी उसको परिचय दिया कि यहाँ हम यही लक्ष्य रख करके हम ये कार्य कर रहे हैं कि कैसे मानव महामानव बन जाए। तो मानव कैसे देव बनेगा, ये सत्कर्मों से बनेगा। और जब हम देवता के रूप में हैं, दो युग तक सत्कर्मों का फल खा रहे हैं, प्रकृति का चरम सुख पा रहे हैं, उस स्थिति को कहते हैं जीवन मुक्ति। जीवन में है पर मुक्ति है, क्योंकि कलयुग में जो चीजें दुख देने वाली है वो सब वहां है ही नहीं, है ही नहीं। कलयुग में क्या समझती है, जन्म मरण ही दुखदाई है, इसीलिए भगवान को कहते हैं भगवान क्यों भेजा दुनिया में। पर सतयुग में जन्म और मरण सुखदाई है, मरण शब्द ही नहीं है। चोला बदलना, जिस प्रकार एक सांप अपनी चमड़ी उतार कर नई चमड़ी धारण कर लेता है तो वो मृत्यु थोड़ी होती है, देखा होगा ना, पुरानी चमड़ी सांप की निकली हुई और वो सांप तो चला गया पुरानी चमड़ी को छोड़ करके, वो तो जिंदा ही है। तो ये शरीर भी उसी रूप में वो चमड़ी है, भले ऐसे चमड़ी नहीं उतरती जो अंदर से नई चमड़ी, वैसे तो आती है, अगर कहीं चमड़ी टूट जाए तो थोड़े दिन के बाद आ जाती है चमड़ी, ये तो प्रकृति की शक्ति है। लेकिन वहां शरीर ही नया मिलता है, स्वेच्छा से देह त्यागते हैं, पहले से ही साक्षात्कार होता है, और गर्भ में भी आत्मा को कोई कष्ट नहीं है। कलयुग के अंदर तो गर्भ में भी कितना कष्ट होता है बात नहीं पूछो, गर्भ के कष्ट कोई कम नहीं होंगे। कई बार हंसी में कहते हैं, वो गरुड़ पुराण में आता है कि गर्भ में जो बच्चा होता है ना वो उल्टा होता है, उल्टा, क्योंकि पहले उसका सिर आता है फिर उसका बाकी शरीर, तो उल्टा होता है, तो उसके हाथ जुड़े हुए होते हैं। तो आत्मा भगवान को पुकारती, हे भगवान मुझे इस जेल से निकालो और मैं जब बाहर आऊंगा कोई पाप नहीं करूंगा। गर्भ जेल भी है ना, जैसे वो भी जेल होते हैं, गर्भ भी जेल की तरह है। तो जब बाहर आता है तो सबसे पहला शब्द क्या कहता है, वहां रोता है, रोता है। पहले जमाने में रुलाते नहीं थे बच्चों को, क्योंकि मालूम था कि बच्चा बोलेगा, कोई गूंगा नहीं निकलेगा। आजकल डर लगता है माँ को, पता नहीं गूंगा न हो, तो इसलिए वो जबरदस्ती भी मारते ताकि वहां बोले। हाँ, रोता है ना बच्चा तो वहां बोलता है, तो वहां माना वहां की बात वहां, यहाँ की बात यहाँ। यानी जो हमने गर्भ में वायदे किए ना कि भगवान मुझे निकालो मैं बाहर आऊंगा कोई पाप नहीं करूंगा, वो जैसे ही बाहर आया तो वायदा गर्भ तक ही रह गया, अभी तो स्वतंत्र हूँ जो चाहूं सो करूं। वो जेल बर्ड्स होते हैं ना, जेल में कई कैदी मना चलो 10 साल सजा भोगी, फिर 10 साल की सजा के बाद जब बाहर आते हैं वो कहेंगे अभी मैं कोई भूल नहीं करूंगा। जब बाहर आए कोई नौकरी नहीं मिली, कोई खाना देने के लिए तैयार नहीं, कुछ नहीं, कहेंगे उसे तो जेल में ही अच्छे थे, कम से कम खाने को तो मिलता है, फिर कोई चोरी की फिर जाओ जेल में, तो सुधरते थोड़ी है। कहाँ सुधरते हैं और ये बड़े चोर होकर के निकलते हैं। हमारे पास कृष्णा अय्यर आए थे, आते रहते हैं, अभी तो बुजुर्ग हो गए, सुप्रीम कोर्ट के जज थे, अभी रिटायर हो गए थे। तो वो उन्होंने एक बार बहुत अच्छी बात कही कि जो जेल में जाते हैं ना, कैदी बनते हैं कोई चोरी की, तो जेल में जाते भी, जेल में तो एक ही कमरा होता, उसमें 50 लोग रहते हैं, अब आपस में तो बातें कर सकते हैं, थोड़ी की बातें नहीं कर सकते हैं, तो पूछेंगे आप क्यों पकड़े गए, आप क्यों पकड़े गए, आप कैसे पकड़े गए। फिर एक वो संगठन बनाते हैं कि कैसे हम जेल से छूटे, फिर और ही जाते हैं अंदर छोटे चोर बन के रूप में, और जब निकलते हैं ना तो बहुत बड़ा प्लान बना लेते हैं कि हम बाहर आकर के क्या करेंगे। तो छोटे चोर के रूप में गए और बड़ा चोर बनकर के बाहर आए। तो परिवर्तन तो कुछ भी नहीं लाते, लेकिन परिवर्तन अगर करते हैं तो उनकी सजा कम हो जाती है, बिल्कुल कम हो जाती है। उम्र कैद में भोगता हुआ व्यक्ति, उम्र कैद, उस अगर परिवर्तन कर लिया जेल में तो उसकी सजा कम होकर के 2 साल 5 साल तक ही केवल रहती है, छूट जाता है क्योंकि बदल गया। तो अब शिव बाबा कहते हैं कि तुम अगर इस समय सत्कर्म करोगे तो ये सत्कर्म भी पाप कर्म के जो फल है उसको कम कर देगा, सजाओं को कम कर देगा। और सत्कर्म का फल तो बहुत ही ऊंचा है, जो मानव देव बन जाएगा वहां पर गर्भ महल के रूप में है, जेल नहीं है गर्भ, बच्चा गर्भ में ही पैदा होता है, योग बल से रचना पैदा होती है, लेकिन गर्भ महल के रूप में। उसका सुंदर उदाहरण है श्री कृष्ण का चित्र, आपने देखा होगा श्री कृष्ण को पीपल के पत्ते पर दिखाते हैं, कभी देखा है फोटो, पीपल के पत्ते पर ऐसे बैठा हुआ है और पैर का अंगूठा मुंह में चूस रहा है, देखा है ऐसा चित्र कृष्ण का फोटो, किसने देखा है, बहुतों ने देखा होगा। अब ये गर्भ महल की निशानी है, और फिर क्या दिखाया, सागर के ऊपर पीपल के पत्ते पर कृष्ण बैठा है और बांसुरी हाथ में है, सिर पर ताज है, जन्म से ही महाराज कुमार, जन्म से ही कितना सुख, ये सत्युग की निशानी है, क्योंकि कितने सत्कर्म किए होंगे तभी तो ये फल उन्हें मिला। तो सत्युग में हमारे कर्म सत्कर्म नहीं है, पाप कर्म का तो प्रश्न ही नहीं है, पर सत्युग में कौन से कर्म होते हैं, अकर्म। अकर्म क्या है, न्यूट्रलाइजिंग एक्शंस। जैसे आपने बैंक में एक बार 10 लाख रुपया डाल करके खाता खोला, मान लो अब एक बार खाता तो खोल दिया, 10 लाख पड़े, परंतु रोज आप 1-1 हजार निकालते जाओ, रोज 1-1 हजार, अब 10 लाख तो काफी है पर रोज निकालते जाओ तो आखिर क्या होगा, एक दिन वो 10 लाख का खाता भी पूरा हो जाएगा, कहां तक रहेगा, क्योंकि निकाल ही रहे हैं, फिर दूसरा तो जोड़ नहीं रहे, भले कितना भी इंटरेस्ट बने तो भी रोज 1 हजार निकालो तो आखिर तो खुट जाएगा, कुएं भी खुट जाते हैं, सूख जाते हैं अगर बारिश न पड़ी तो, डिपॉजिट भी तो चाहिए ना। तो इसी प्रकार कई कहते हैं कि सत्युग में अगर हम देवता थे फिर कहां गए, भाई मनुष्य बने द्वापर युग से, तो कई कहते हैं मनुष्य क्यों बने, कोई पाप किया क्या, वास्तव में पाप नहीं किया, लेकिन सत्कर्म का जो फल मिला वो प्रकृति का चरम सुख केवल खाते गए, खाते गए, खाते गए, खाते गए, तो खाते खाते कुएं भी सूख जाते हैं। तो ये चक्र कैसा है, जैसे गांव में रेंट होती ना, रेंट बोलते ना उनको, वो आधा समय पानी लेकर के कुएं से आते हैं वो मटके, और आधे समय के बाद वो मटके खाली हो जाने के बाद फिर हवा भर के जाते हैं, फिर पानी भर के आते हैं, ये आधा आधा है। तो ये संसार का चक्र भी ऐसा ही है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इस चक्र को एक सीढ़ी का रूप दे तो जो पहले दो युग है सतयुग त्रेता, उसी को स्वर्ग कहते हैं, जहां मानव देवात्मा के रूप में, और द्वापर कलयुग को नर्क कहते हैं। तो फिर कई कहते हैं कि हम मानव क्यों बन गए देवता से, फिर कई ये भी कहते हैं कि अगर देवता से मनुष्य ही बनना है तो फिर देवता ही क्यों बने, जब ठीक है जैसे है वैसा ही है, इतनी मेहनत ही क्यों करें। अब आप रोज मेहनत करके खाना पकाते हो, फिर खाते हो, फिर दूसरे दिन फिर मेहनत करके खाना पकाना है, अभी फिर खाना हजम ही होना है तो खाओ ही क्यों, ऐसे कहेंगे क्या, कैसे कहेंगे क्या? हाँ, शरीर को तो भोजन चाहिए। एक खिलाड़ी कहे कि मैं तो हार जाऊंगा इसीलिए खेलूंगा ही नहीं, तो उसको खिलाड़ी कहेंगे क्या, क्या कहेंगे? हाँ, कायर। तो शिव परमात्मा हमें क्या कहते हैं, हे आत्माएं अब अपने कर्मों को चेंज करो क्योंकि तुम देवता बनने वाले हो। तो अगर देवता से फिर मनुष्य तो बनेंगे, और जो सत्कर्म का फल दो युग तक चलता है, और फिर जैसे विकारों की प्रवेशता होती है तो हमारे कर्म पाप के खाते में जाना शुरू हो जाते हैं। लेकिन पाप के साथ साथ पुण्य का खाता भी द्वापर युग से ही शुरू होता है, इसलिए पुण्य आत्मा पाप आत्मा ये द्वापर कलयुग में बनते हैं, सतयुग में केवल देव आत्मा के रूप में। तो पाप के साथ पुण्य, अभी पुण्य कर्म क्या होता है, कोई भी प्रकार का दान, अन्न दान, वस्त्र दान, रक्त दान, नेत्र दान, भू दान, ये दान माने गए हैं। 14 प्रकार का दान माना गया है, गौ दान, ये सब दान है, और ये दान पुण्य बनता है। कई समाज सेवी संस्थाएं दान करती है तो उनका पुण्य बनता है, पर वो पुण्य जो बना वो केवल एक जन्म के लिए चलता है, क्योंकि केवल वस्तु का ही दान है, साथ में ज्ञान दान, गुण दान, शक्ति दान, ये दान नहीं है, केवल वस्तु दान ही है। तो उसका फल एक जन्म के लिए मिलता है। कोई धन दान करता है तो अगले जन्म में किसी धनवान के घर पैदा होगा, कोई हॉस्पिटल बनाता है तो अगले जन्म में अच्छी काया मिलेगी उसे, कोई स्कूल कॉलेज बनवाता है तो उसे अगले जन्म में बुद्धि अच्छी मिलेगी, विद्या अच्छी ग्रहण करेगा, तो एक जन्म का फल है। लेकिन वो फल भी तब माना जाए जब पुण्य कर्म कब बनता है, उसके लिए भी दो बातों का ध्यान रखना होगा, तभी वो पुण्य कहलाता है, नहीं तो पुण्य नहीं बनता है दान। वो पुण्य कब बनता है, जब दान करने वाला व्यक्ति इतना गुप्त रूप से करे, अच्छे कार्य के लिए गुप्त रूप से करे, प्रत्यक्ष न करे। इसीलिए कहा गया नेकी कर दरिया में डाल। दायां हाथ आपका दान करता है तो बाएं हाथ को पता भी नहीं चलना चाहिए, इतना गुप्त हो, तब वो दान पुण्य बनता है। अगर वर्णन करते हैं, नाम लिखवा देते हैं, या सही दुनिया को बताने की कोशिश करते हैं, वो पुण्य नहीं बनता है। गुप्त दान महाकल्याण। नेकी और पूछ, ये भी कहावत है, नेक कार्य करने के लिए पूछना भी नहीं होता है, जिसमें सबका कल्याण समाया हुआ है वो पूछ के नहीं करना होता है, करना होता है। तुरंत दान महाकल्याण, वो महापुण्य बन जाता है। तो एक तो जो भी दान हो वो दिखावे का न हो, वो पुण्य बनता है, और दूसरा दान तब पुण्य बनेगा जब सचमुच जिसको हम दान करते हैं वो उसको आवश्यक हो। आवश्यक है नहीं और वो पात्र भी नहीं है, योग्य भी नहीं है, उस दान का वो निष्फल कर देगा, उसका सदुपयोग नहीं होगा, तो वो दान पुण्य नहीं बनता है। जैसे बीज हम धरती में डालते हैं, लेकिन बीज धरती में पड़ने के बाद फल तब देगा जब धरती पहले उपजाऊ हो। अगर धरती बंजर है और उस बंजर धरती में बीज डाल दिया तो क्या होगा, फल मिलेगा? तो वो व्यक्ति या जिसके प्रति करते वो पात्र होना चाहिए। अगर कुपात्र है तो वो दान पुण्य नहीं बनता है। तो दो बातें हैं पुण्य कर्म के लिए, एक तो नेकी कर दरिया में डाल। ये नहीं कि नेकी करने के बाद सोचो कि मैंने इतना किया मेरा नाम मान शान क्यों नहीं हुआ, वो पुण्य नहीं बनेगा। अच्छा कर्म करो, फल ईश्वर पर छोड़ दो, उसके पीछे मत पड़ो। और दूसरा, योग्य व्यक्ति योग्य को ही मिलना चाहिए। और ये दो बातें अगर है तो वो पुण्य कर्म बनता है और एक जन्म का उनको आगे फल मिलता है। लेकिन द्वापर में चलो लोगों ने मंदिर बनाए, मस्जिद बनाए, गुरुद्वारे बनाए, न जाने बहुत कुछ किया, बहुत पुण्य का खाता जमा किया, पर कलयुग में जैसे आते गए धीरे धीरे पुण्य धीरे धीरे कम होता गया। कई बार हंसी में कहते हैं कि पहले जमाने में कहते थे नेकी कर दरिया में डाल, दरिया तो विशाल है सागर, धीरे धीरे ये कहावत बदल गई, नेकी कर कुएं में डाल, ये कहावत बन गई, क्योंकि कुआं ही पर्याप्त है, दरिया जितनी नेकी तो कोई करता ही नहीं है। फिर ये कहावत भी बदल करके क्या बन गई, नेकी कर खड्डे में डाल, खड्डा ही बस है, कुआं भी बहुत बड़ा है। और उसके बाद मुझे किसी ने कुछ दिन पहले एक नई कहावत बताई, आजकल क्या कहते हैं, नेकी कर पॉकेट में डाल। समझ गए, नेकी कर पॉकेट में डाल। पॉकेट किस लिए है, अंदर डालने के लिए। नाम तो बहुत है कि ये दान किया, ट्रस्टीज होते ना, दान करते हैं, सेवा करते हैं, पर सेवा तो करते हैं, अच्छी बात है, पर उसका कितना हिस्सा अपने जेब में जाता है वो तो कोई गिनती नहीं, पता ही नहीं, स्वार्थ है इंसान को, तो वो पुण्य क्या बनेगा, वो तो पाप के खाते में ही जाएगा। तो आज जितना पाप हो रहा है उसकी भेंट में पुण्य तो बहुत कम हो रहा है, और कुछ ऐसे पुण्य है जो धीरे धीरे पाप के खाते में जा रहे हैं। नाम तो किया भाई, मंदिर बनाना है इतना पैसा चाहिए, चलो दिया, मंदिर बनाना अच्छा पुण्य का कर्म है, लेकिन चलो सूची भी तैयार हो गई, फलाने इतने इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया। कई लोग तो उसमें भी कॉम्पिटिशन करते, मेरा नाम सबसे ऊपर आना चाहिए, मेरा नाम सबसे ऊपर आएगा तो मैं दूंगा और सबसे ज्यादा दूंगा, जितने चाहिए लो, पर मेरा नाम सबसे ऊपर आना चाहिए, मेरा नाम कल अखबार में आना चाहिए, फोटो आना चाहिए कि हमने इतना चेक दिया, इतना ड्राफ्ट दिया, ये दिया वो दिया। चलो खाता खुल गया, ठीक है, नाम की सूची भी आ गई, लेकिन कई बार ऐसे होता है मंदिर बनता ही नहीं, तो कहां गया सारा पैसा, भगवान जाने कहां गया, पता ही नहीं। तो इसलिए पुण्य बनता ही नहीं है, और अपना नाम कर दिया तो भी पुण्य नहीं बनता है। इसलिए शिव परमात्मा हमें कहते हैं कि कलयुगी दुनिया में पुण्य का खाता जीरो लगभग, कोई कोई का होगा, बाकी तो पाप का ही खाता है। अब इस पाप के खाते को कैसे खत्म करेंगे, तीन तरीके शिव बाबा ने बताए, और अगर ये तीन तरीके नहीं अपनाए तो भगवान चौथा तरीका अपनाएगा, जिसके लिए कहते हैं कि ईश्वर के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है, देर भली पर अंधेर नहीं है। तो वो तीन तरीके कौन से हमें शिव बाबा कहते हैं, वो एक तरीका है प्यार का। बच्चा अगर मैदान में खेल रहा है, दिन भर खेल रहा है, शाम को तो माँ उसको वापस बुलाएगी ना, बेटा चलो घर, तो पहले प्यार से कहेगी बेटा चलो घर चलो, बहुत मैले हो गए, चलो स्वच्छ हो जाओ, साफ हो जाओ, पहले प्यार से कहेगी, फिर उसके बाद थोड़ी आंख दिखाएगी, दिखाएगी ना, नहीं मानेगा तो कैसे छोड़ देगी उसको, घर तो ले ही जाना है, फिर आंख दिखाएगी, लेकिन आंख दिखाने से भी वो नहीं मानता है तो जबरदस्ती भी उसको ले जाएगी या छोड़ देगी, छोड़ देगी क्या, तो भगवान भी हमको जबरदस्ती तो ले ही जाएंगे, हम चाहे या न चाहे। तो तीन तरीकों से कैसे हम अपनी स्व इच्छा से अपने पापों को खत्म कर सकते हैं। पहले ये बात है, जितना हम शिव बाबा को याद करते रहेंगे उतना उतना हमारे पाप खत्म होते जाएंगे। इसलिए जितना योग करो उतना अच्छा, अमृत वेले उठो, हर घंटे घंटे करो, रात को करो, भोजन करने से पहले करो, जब समय मिले चाहे एक मिनट ही सही। मैं आत्मा शांत स्वरूप, शांति सागर परमात्मा की संतान, परम धाम का वासी, उस बिंदु में सिंधु की शक्ति को पहचान कर उनके गुण में खो जाओ। ये योग है, बहुत सहज, एक मिनट के अंदर भी हो सकता है। बाबा हमें बहुत तरीके बताते हैं, आजकल तो बाबा हमें भिन्न भिन्न तरीके बता रहे हैं। 5 मिनट में 5 स्टेजेस का चक्र है, जैसे एक्सरसाइज करते ना 1 2 3 4, ऐसे एक्सरसाइज भी बाबा बताते हैं। ये सब योग के अलग अलग तरीके हैं, वो आप सेवा केंद्रों पर जाकर के सुनना और अनुभव करना, अभ्यास करना, जिससे आत्मा शुद्ध और पावन बनती जाएगी। दूसरा तरीका है, कदम है, कि अगर कोई ने हमें कुछ कहा, कुछ गाली दी, कुछ दुख देने की कोशिश कर रहा है, मैं उसको मत लूं और क्या सोचूं, कोई बात नहीं, ये सब कोई कर्म का हिसाब किताब चुकता हुआ, दुखी मत हो जाओ। कोई जबरदस्ती किसी को दुख नहीं दे सकता है, पर हम दुख ले लेते हैं और कर्म का खाता बना लेते हैं। इसीलिए दुख मत करो, वो हिसाब किताब चुकता हो गया, ये समझ करके आनंद मग्न रहो कि मैं आत्मा तो शांत स्वरूप आनंद स्वरूप हूं, ये हिसाब किताब चुकता हो रहे। तीसरा कदम है कि शरीर का अगर रोग आया, कोई धन की कमी है, इसमें भी दुखी मत हो जाओ, ये सोचो कि मेरा हिसाब किताब चुकता हो रहा है। कई बार ना तन का रोग आया तो दुखी हो जाते, हाय ये तन का रोग आया, हे भगवान क्या मैंने पाप किया, हे भगवान, ऐसे मत कहो, हिसाब किताब तो मेरा ही है, तो मुझे तो उसको उसका फल पाना ही है। लेकिन अब कैसे उसको सहज चुकतू कर सकते हैं, क्या सोचो ये तन भी शिव बाबा आपका है, ये मेरा नहीं है, ये तन आपका है, आप संभालो, आप जानो, और मैं निश्चिंत हो जाऊं। डॉक्टर दवाई दे रहे हैं, कुछ दवा कुछ दुआ जितना होगा ठीक है, बाकी तो पुराना चोला है, पुरानी जुत्ती है, जितना चलाना है चलाओ, पर उसमें दुखी होना माना मोह रखना अपने शरीर में, पर मोह नहीं रखना है, ये भी विकार बन जाएगा, ये भी पाप के खाते में जाएगा। अब इतना ऊंचे हमें सोचना है, तो पहली बात शिव बाबा की याद से पाप भस्म करने हैं। दूसरी बात कि अगर कोई हमें दुख देने की कोशिश कर रहा है, ये समझो हिसाब किताब चुकता हो रहे, और तन का रोग आ रहा, हिसाब किताब चुकता हो रहे, ये सब चुकता हो रहा है, खुशी खुशी चुकता करो, ऋण है मेरे सिर पर, कोई लेने आया कर्जा, चुकता करो, मेरे पास बहुत संपत्ति है, क्यों नहीं है, मैं तो शक्ति रूप हूं ना आत्मा। फिर तीसरी बात कैसे खत्म होता है, उतने ही सत्कर्म करो। जैसे कई बिजनेसमैन क्या करते हैं, कई 2 नंबर का कुछ ऐसे बिजनेस में कुछ गड़बड़ किया तो समझते हैं कि ऐसा ही सब अपने जेब में डालना ठीक नहीं है, तो 10% 5% दान करते हैं, दान पुण्य करते हैं, समझते हैं कि वो जो पाप है ना वो कम हो जाएगा दान करने से। तो जितना ही हमने पाप किया उतना ही सत्कर्म करो, तो वो सत्कर्म करने से पाप का खाता कम होता जाएगा। अब ये 3 तरीके हैं अपने हिसाब किताब को चुकतू करने के, और अगर ये 3 तरीकों में से कोई भी 3 तरीका अपनाया तो खत्म होगा, नहीं तो पाप का बोझा चढ़ता हुआ जाएगा। और शिव बाबा कहते हैं मैं धर्मराज भी हूँ, और धर्मराज की पुरी में सूक्ष्म वतन धर्मराज पुरी बन जाएगा अंत में, सबको अपने पापों की सजा मिलनी है, कोई भी पाप को परम धाम नहीं लेके जा सकेगा, लेकिन सजा तो खाएगा और हाथ खाली हो जाएगा, सत्कर्मों की पूंजी तो वो भी साथ में नहीं जाएगी, तो हाथ खाली हो जाएगा फिर परम धाम जाएगा तो क्या फायदा, हाथ खाली फिर तो परम धाम में जाके सो जाएगा, वहां तो मुक्ति की अवस्था में केवल शिशुप्त अवस्था है, कोई अनुभूति तो कुछ नहीं है। जैसे रात को गहरी नींद में सो जाते पता ही नहीं चलता, जब जागते हैं तब पता चलता है कि नींद भी मैंने अच्छी की क्योंकि फ्रेश हो गए। तो परम धाम में मुक्ति की अवस्था में शांति तो क्यों नहीं है, लेकिन वो शांति की अनुभूति भी तब हम कर सके जब हम संसार में आए। तो इसलिए मुक्ति याद आती है क्योंकि उस मुक्ति धाम में शांति की अनुभूति है, पर उस स्थिति में अनुभव नहीं कर पाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। जैसे गहरी नींद में हम थोड़े अनुभव करते हैं कि हम गहरी नींद सो रहे हैं, वो तो समय तो जैसे आधे मुर्दे हैं, पर जब जागते हैं तब कहते हैं अरे बहुत अच्छी नींद आ गई, एकदम फ्रेश हो गया। या नींद में कहते हैं बहुत अच्छी नींद आ गई है मुझे, ऐसे बोलते हैं क्या? नहीं, ये तो पता ही नहीं। तो जब हम संसार में आते हैं तब तो मुक्ति हमें याद आती है। इसलिए कल बताया मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों आंखों में रखो। तो घर भी जाना है पर साथ साथ सत्कर्मों की पूंजी जमा करके भी जाना है, ताकि मैं सतयुगी दुनिया में सम्मान के साथ आकर के प्रकृति का भी चरम सुख प्राप्त कर सकूं। ये ईश्वर की देन है, एक वरदान है, एक वर्षा है। जैसे बच्चे को अधिकार मिलता है, भगवान का दिया हुआ अधिकार है सतयुगी सुख शांति समृद्धि की दुनिया। अब आप ही निर्णय कीजिए आप क्या चाहते हो। सत्कर्म करके अपना भाग्य जगाना चाहते हो या पाप कर्मों की गठरी जमा करते धर्मराज की सजाएं खाना चाहते हो, क्या चाहते हो? हाँ, पहला या दूसरा? हाँ, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कल दादी जी ने बताया ना कि कुछ हाँ त्याग करके जाओ, ये दान करके जाओ। दुनिया में क्या करते हैं, तीर्थों पर जाते हैं ना, तो जो चीज अच्छी नहीं लगती ना वही दान करके जाते हैं। कई लोग बैंगन खाते ही नहीं है तो अच्छा बैंगन दान करके जाता हूँ। अरे भाई, जो खाते ही नहीं हो वो क्या दान कर रहे हो? जो चीज बहुत अच्छी लगती है पर नुकसान करती है, नुकसानकारक है, वो दान करो। क्रोध अच्छा लगता है, कई समझते बिना क्रोध के कैसे चलेंगे, चले सकते हैं, दान कर सकते हैं। लोभ के बिना रह सकते हैं, आत्मा पुण्यात्मा बन जाएगी, धर्मात्मा बन जाएगी, देवात्मा बन जाएगी। और वैसे भी ये सब खत्म होना ही है तो सोचना। अभी हम यहाँ समाप्त करते हैं, 3 मिनट योग में बैठेंगे, उस समय सोचना और शिव बाबा को कहना कि बाबा मैं आज ये कमी ये कमजोरी स्वाहा करके जा रहा हूँ। करेंगे स्वाहा? जो स्वाहा करेंगे वो हाथ ऊपर करे। अच्छा, बाबा देख रहा है आप सबको। शिव बाबा के घर में आपने हाथ उठाया, प्रतिज्ञा की है, तो इसलिए उस प्रतिज्ञा का पालन जरूर करेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। राजयोग में जितना आत्मा का महत्व है, परमात्मा का महत्व है, समय का महत्व है, तो उसी प्रकार कर्म का महत्व है। कर्म का महत्व, क्या करे क्या न करे, अच्छा क्या है बुरा क्या है, पाप क्या है पुण्य क्या है, सुख क्या है दुख क्या है, कई लोगों के मन में इस प्रकार के प्रश्न हैं और उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिलता। कल दादी जी ने कहा झूठ नहीं बोलो, चोरी नहीं करो, ठगी नहीं करो, दुख नहीं दो, क्योंकि ये सब पाप के खाते में जाते हैं। लेकिन उसके बाद एक व्यक्ति आया मेरे पास, एक चिटकी पकड़ाई, प्रश्न दिया कि बहन जी कई ऐसे प्रसंग होते हैं जहां झूठ बोलना पड़ता है, कल्याण अर्थ झूठ बोलना पड़ता है। तो हमने कहा देखिए इस संसार में सब कुछ रिलेटिव है, सापेक्ष है, इसलिए साधारण इंसान नहीं समझ पाता है कि क्या करे क्या न करे। एक कहावत है कि किसी एक व्यक्ति के लिए वही चीज भोजन होगी पर दूसरे के लिए वही चीज जहर होगी। किसको लो बीपी हो गया, लो शुगर हो गया, तो कहेंगे इनको शुगर शक्कर का घोल पिलाओ, शक्कर पिलाओ, एकदम शक्कर डाउन हो गई है। तो जानबूझ करके शक्कर डाल करके या ग्लूकोज डाल करके पिलाते, मीठा खिलाते। और अगर डायबिटिक पेशेंट हो, 300 400 डायबिटीज हो, मान लो उसको शक्कर का घोल पिलाओ तो क्या होगा, है? मर जाएगा। तो इसीलिए कौन सा कर्म किस समय हम करें, वही दवाई है। एक थोड़ी सी मात्रा में खाएंगे तो हमें फायदा करेगी, पर वही दवाई एक साथ खा लो तो मर जाएंगे, जहर है वो। इसलिए दवाइयों पर लिखा रहता है कि कृपया डॉक्टर की सलाह पर ही लेना, ये नहीं कि चलो बीमारी एक साथ सब खा लेंगे ठीक हो जाऊंगा। वो कहानी सुनाते ना कि एक व्यक्ति था, उसको एक मुर्गी थी, तो रोज अंडा देती थी, सोने का अंडा देती थी। उसने कहा रोज एक एक ही अंडा मिलता है, हाँ इसको मार डालो तो सारे अंडे निकल आएंगे। देखिए नहीं, तो समय स्थान परिस्थिति व्यक्ति इन सब के आधार पर कर्म का परिणाम बदल जाता है। मान लीजिए मैं एक अंगुली उठाती हूँ, ये भी कर्म है, और ये तो कोई बुरा कर्म नहीं है, लेकिन इस अंगुली से मैं क्या करती हूँ, चाकू उठाती हूँ। एक डॉक्टर भी सर्जन भी चाकू उठाता है, जब सर्जरी करनी होती तो चाकू तो उठाना पड़ता ना, काटना तो पड़ता है। अब वही चाकू किसी सर्जन के हाथ में मिल जाए और वो सर्जरी करके किसी की जान बचा लेता है, पर वही चाकू किसी खूनी के हाथ में आ जाए तो वो तो खून कर देगा। तो चाकू तो चाकू ही है, ऐसे तो नहीं कहेंगे कि चाकू ही मारता है, वो तो बचाता भी है। हत्या करना पाप है, जरूर बहुत बड़ी बड़ा पाप है, हमें कोई अधिकार नहीं है किसी की जान लेने का। एक माँ सोचे मैं तो इस बच्चे की माँ हूँ, मैंने ही पैदा किया है तो मैं ही इसे मार डालती हूँ, लेकिन नहीं, पैदा भले किया लेकिन मार नहीं सकती हो, एक सजा है बहुत, हत्या है। लेकिन वही कर्म एक सिपाही करता है बॉर्डर पर, देश की रक्षा उसे करनी है, 100 करोड़ से भी अधिक जनसंख्या भारत की, उसकी रक्षा करनी है, इसीलिए उसे वहां बॉर्डर पर तैनात किया है। और सामने से दुश्मन का वार हो रहा है और उस समय गोली चलानी है उसे, और अगर नहीं चलाता है तो ये उसको सजा मिलेगी, क्यों नहीं चलाई गोली। वो सोचे नहीं नहीं हत्या करना तो पाप है, हा? लेकिन अगर वो गोली चलाता है और दुश्मनों को ढेर कर देता है, देश की रक्षा हो जाती है, तो उसको तो परम वीर चक्र मिलता है ना, कितना प्रेसिडेंसी अवार्ड मिलता है, कितना उसका नाम हो जाता है कि उसने कैसे ढेर किया, दुश्मनों को खत्म किया। परंतु ऐसे ही कोई कर दे तो जेल में डाला जाएगा। तो इसीलिए कई बातें हैं, इसीलिए गीता में जैसे आता है कि कर्म की गति बड़ी गहन है, इसे साधारण व्यक्ति समझ नहीं पाता है, इसलिए वो सोचता ही रहता है, प्रश्न ही करता है कि आखिर अच्छा क्या है, बुरा क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है। तो परमात्मा ने आकर के हमें कर्म का बहुत श्रेष्ठ ज्ञान दिया है। जैसे आपको कल बताया, देखना पाप नहीं है, लेकिन अगर दृष्टि में वासना भरी हुई है ये पाप जरूर है। मुख पर जिबान है, मुख में, इस जिबान में कड़वी भाषा है, ये पाप जरूर है। इसलिए कहते हैं सत्यम ब्रियम पर प्रियम ब्रियम, सत्य बोलो, कई समझते सत्य कड़वा होता है, सत्य बोल, मैं सत्य बोल रहा हूँ इसलिए आपको कड़वा लग रहा है, लेकिन वही सत्य आप प्यास से भी बोल सकते हो ना, जरूर थोड़ी कि कड़वा ही बोलना है हमें, वो मिसाल देते ना कि एक बेचारा भिखारी भूख लगी थी, एक गुड़ के दुकान में गया, कहा साहब बहुत भूख लगी थोड़ा सा गुड़ दो, तो उस दुकान वाले ने खूब गालियां दे के भगा दिया, हट जाओ, बहुत कुछ कहते हैं। तो जाते जाते कहा अच्छा साहब भले गुड़ मत दो पर गुड़ जैसा मीठा तो बोलो, गुड़ मीठा है तो मीठा तो बोलो, उसमें तो आपका कोई खर्चा नहीं होगा ना, गाली क्यों दे रहे हो, हमने कोई पाप थोड़ी किया है, केवल मांग ही रहा हूँ। लेकिन वो कंजूस होगा दुकानदार, थोड़ा सा गुड़ देने में क्या जाएगा, कितना उसका खर्चा होगा जरा सा गुड़ का, कोई हाथ पसार के मेरे सामने खड़ा रहे और मैं उसको गाली दूं, कैसा भी व्यक्ति होगा, थोड़ा भी भावना ऊंची होगी, दिल बड़ा होगा, भले अपने पेट से भी निकाल के देगा जरूर, ऐसे नहीं कि गालियां देगा, ये समझदारी है, इससे दुआएं मिलती है। अगर थोड़ा सा कम खाया तो मर थोड़ी जाएंगे। तो हम देखें कि कैसे पता चले कि कौन सा कर्म अच्छा है कौन सा बुरा है, और उस अनुसार कितने प्रकार के कर्म होते हैं, और केवल उन कर्मों का एक जन्म पर प्रभाव नहीं पड़ता है, अनेक जन्मों पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि भूत के आधार पर मेरा वर्तमान बनता है और वर्तमान के आधार पर मेरा भविष्य बनेगा। आज जो मेरी वर्तमान स्थिति है ये ऐसे ही नहीं बनी, जरूर भूत में पास्ट में कुछ ऐसे अच्छे कर्म है मेरे जिसका ये परिणाम है। आज मानो कोई बुढ़ापे में भी बहुत स्वस्थ है, बहुत ही अच्छा है, जरूर जवानी में उसने कुछ ऐसी कसरत की है, मेहनत की है, कोई तो जवानी में ही बूढ़े दिखने लगते हैं, मेहनत ही कुछ नहीं करते, शरीर को व्यायाम ही नहीं देते हैं, इसलिए जरूरी है। तो परिणाम दिखाई देता है, ये वर्तमान का परिणाम जरूर भूत का ही परिणाम है। कोई बहुत ऊंचे औहदे पर पहुंचते हैं ऐसे ही थोड़ी पहुंचते हैं, हमारे राष्ट्रपति भारत के क्या उसने मेहनत की होगी, ऐसे ही थोड़ी राष्ट्रपति बना। तो हम देखें कि वर्तमान भूत का परिणाम है, पर यही वर्तमान फिर भविष्य को निर्धारित करेगा, मैं अपना भविष्य कैसा बनाना चाहती हूँ। इसको इंग्लिश में कहते हैं एवरी कॉज लीड्स टू एन इफेक्ट एंड एवरी इफेक्ट बिकम्स अ कॉज फॉर अनदर इफेक्ट, एक चेन साइकिल है ये, चेन है ये, जैसे एक सांकड़ी होती ना गुजराती में कहते हैं, चेन होती है, एक के अंदर एक वो जुड़े हुए होते हैं, अगर एक टूटा माना सारी चेन बेकार, एक पर भी कितना निर्भर होना पड़ता है, चेन की जो चेन होता है उसकी कितनी शक्ति है वो कैसे मापी जाती है, जो सबसे कमजोर जो चेन है वो जो जोड़ता है उसके आधार पर, जो सबसे कमजोर है, जो सबसे मजबूत है उसके आधार पर नहीं, क्योंकि अगर वो कमजोर वाला टूट गया तो चेन खत्म। एक दीवार है चाहे कितनी ही मजबूत हो, पर एक ईंट अगर कमजोर है तो एक ईंट ही सारे दीवार को तो गिरा सकती है अगर कमजोर है तो। इसलिए हम देखते हैं वर्तमान कैसे भविष्य को परिणाम देता है। तो ये संसार चक्र में कितने प्रकार के कर्म होते हैं, कलयुग ऐसे ही नहीं आया हमारे कर्मों से आया, सतयुग ऐसे ही नहीं आएगा हमारे कर्मों से आएगा, रात ऐसे ही नहीं आती है भाई दिन ढलता है क्योंकि सूर्य दूसरे तरफ चला गया, दिन ऐसे ही नहीं आता है सूर्योदय होने से आता है। तो शिव परमात्मा ने कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान दिया है। हम इतना ही समझते हैं कि एक कर्म पाप होता है एक कर्म पुण्य होता है, लेकिन शिव बाबा ने चार प्रकार के कर्म बताए, केवल दो नहीं, पाप और पुण्य केवल नहीं, चार प्रकार के कर्म, पाप कर्म, पुण्य कर्म, सत्कर्म जिसको सुकर्म श्रेष्ठ कर्म भी कहेंगे, और पाप कर्म को विकर्म भी कहेंगे। तो पाप कर्म या विकर्म, पुण्य कर्म, सत्कर्म या सुकर्म या श्रेष्ठ कर्म, और चौथे अकर्म। भगवान के महावाक्य हैं कि मैं कर्म अकर्म और विकर्म की गुह्य गति तुम्हें समझाता हूं। तो इसीलिए समय को हम जब समझ जाते हैं तो कर्मों में परिवर्तन लाना जरूरी है। अब रात का समय हो गया है और हम टीवी देख रहे हैं, सारी रात देख रहे हैं, घरवाले कहेंगे भाई सो जाओ, अभी सोने का समय है, रात हो गई है, वो जाकर के किचन में खाना खा रहे हैं। अरे रात हो गई, इस समय थोड़ी खाना होता है, दिन में और खाना होता है, रात को सोना होता है। पर कई ऐसे लोग होंगे जो रात को खाते हैं, जागते और दिन में सोते हैं। साइकिल ही चेंज, तो शरीर पर उसका असर पड़ता है, क्योंकि शरीर उसके लिए बना हुआ नहीं है, कई रोग लग जाते हैं। साइकिल है ना, मशीन है। अब मशीन जैसे चलानी, उसको उल्टी उल्टी चला लो मशीन, तो क्या होगा, नेचुरली वो बिगड़ जाएगी। तो जीवन के अंदर भी हम ये देखते हैं, तो संसार चक्र में भी हम ये देखें। तो सबसे पहले हम देखें पाप कर्म क्या है, पाप की परिभाषा क्या है। पाप की परिभाषा बहुत गहरी है, लेकिन अगर इसको हम साधारण शब्दों में कहें, एक उसके लिए कहावत है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। पढ़ते हैं ना, बोलते भी हैं सब, कि दया धर्म का मूल है, धर्म का मूल दया है, पर पाप का मूल क्या है, अभिमान है। जो भी कर्म अभिमान से शुरू होता है वो पाप के खाते में जाता है। अब ये है पाप की परिभाषा। पाप का पहला दरवाजा है मैं, अभिमान ना? अभिमान के वश अगर मैं ऐसा अगर कहते रहते हैं, वो जितनी बार अभिमान वश मैं कहते रहते हैं, वो पाप के खाते में जुड़ता जाता है। एक बकरा या बकरी भी मैं करते हैं ना, सारा दिन मैं ही करते हैं, पर उन पर थोड़ी पाप चढ़ता है मैं करते हैं तो, वो तो उनकी भाषा है। लेकिन इंसान सुबह से लेकर रात्रि तक अभिमान वश मैं कहता है। किसी ने एक स्टैटिस्टिक्स निकाली थी कि शब्द कोश में, डिक्शनरी में लाखों शब्द हैं, लेकिन ये सारे लाखों शब्द थोड़ी हम लोग बोलते हैं। कई तो शब्दों का अर्थ ही पता नहीं है, तो मुख पर भी नहीं है, कभी बोला ही नहीं है, ऐसे भी शब्द हैं। लेकिन एक शब्द है जो हम सबसे ज्यादा बोलते हैं, वो भी डिक्शनरी का ही शब्द है, वो कौन सा है, अभी बताएं कौन सा, मैं, आई। अगर आप देखेंगे डिक्शनरी में, जब जहां आई शुरू होता है तो सबसे पहले आई ही आता है, मैं। तो अभिमान वश मैं कहा, ये पाप का खाता शुरू हुआ। फिर दूसरा शब्द है मेरा। जितनी बार सुबह से लेकर रात्रि तक मेरा 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 हाँ मेरा मेरा कहा, वो दूसरा दरवाजा है, पाप को बढ़ाएगा। वाल्मीकि के लिए तो कहते हैं कि उसको कहा तुम राम राम जपो, तो राम राम तो भूल गया, मरा 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 कहा पर मरा मरा का तो भी उद्धार हो गया, पर मेरा 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 कहेंगे तो उद्धार होगा क्या, होगा क्या? तो इसीलिए मेरा माना मोह के वश है। कई कहते हैं बहन जी मैं कभी चोरी नहीं करता हूं, चोरी करना पाप है, हमें क्या अधिकार है किसी दूसरे की चीज लेने की। झूठ बोलना पाप तो है एक हिसाब से, लेकिन कोई कई बहन जी मैं कभी झूठ नहीं बोलता, कभी चोरी नहीं करता, बड़ा अभिमान है उससे कि मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मैं चोरी नहीं किया है कभी जिंदगी में। लेकिन अगर हमें आत्मा का ज्ञान नहीं है, तो जितनी बार भी देह के अभिमान में हम मैं कहते रहते ना, ये झूठ है, ये झूठ है, झूठ के खाते में जाएगा। क्योंकि मैं तो वास्तव में आत्मा हूँ। कौन है हम सब? आत्मा है। और अगर हम अपने आप को शरीर समझ बैठेंगे तो झूठ है। जो मैं हूं नहीं और वो मैं अपने आप को समझूं तो झूठ हो गया ना। वो नेहरू जी का मिसाल बताते हैं ना कि नेहरू जी एक बार एक पागल खाने में गए, तो पागल खाने में जब देखा बड़े पागल लोग थे, तो सोचा मैं एक व्यक्ति का परीक्षण करूं जरा सचमुच ये पागल है क्या। तो उसके सामने गया और उस व्यक्ति ने पूछा आप कौन है? तो कहा कि मैं जवाहरलाल नेहरू हूँ, मैं भारत का प्रधानमंत्री हूँ। तो पागल कहता मैं भी ऐसे ही सोचता था मैं भी ऐसे ही सोचता था। उसको लगा कि जैसे मैंने सोचा ये भी ऐसे ही सोच रहा होगा तो मैं एक अभिमान है ना इंसान को। तो वास्तव में ये भी तो झूठ है। मैं हूँ वास्तव में आत्मा और अपने आप को शरीर समझ बैठी हूँ, तो ये झूठ के खाते में ही तो जा रहा है, ये भी पाप के खाते में जा रहा है। फिर कोई कहे मैं चोरी नहीं करता, लेकिन मेरी वस्तु जिसको मैंने अपनाया है या मेरा कहती हूँ उसमें भी अगर मोह रख के बैठी हूँ, ये भी तो चोरी है। चोरी नहीं है? चोरी की क्या होती है भाई? दूसरे की चीज अपनाना, अपना समझना, जब्त कर लेना छिप करके। एक होता है चोरी, दूसरी होती है डाका। तो डाका कैसे लगाते हैं? बंदूक दिखाएंगे, निकालो निकालो, तो जबरदस्ती छीनेंगे, वो डाका हो गया। और चोरी हो गई छिप छिप करके उठा लेंगे, बेचारे को पता भी नहीं चलेगा कि मेरी चीज भी किसी ने उठा ली। तो जिस प्रकार वो चोरी मानी जाती है दूसरे की चीज उठाना, इसी प्रकार इस संसार के अंदर जितना भी वैभव है, वस्तु है, व्यक्ति है, कोई भी है, ये शरीर ही तो प्रकृति है ना। ये प्रकृति की चीज है, मेरी चीज ही नहीं है, मैं तो आत्मा हूँ। ये प्रकृति का तत् शरीर भी मैंने यहाँ ही लिया और यहीं मैं छोड़ के जाऊंगी आत्मा। ये शरीर को साथ थोड़ी ले जाऊंगी, ले जाऊंगी क्या? तो मेरा कहाँ से आया? अगर मेरी चीज हो तो मैं लेके जाऊं ना साथ में। मेरी चीज हो तो मैं लेके भी आई हो तब तो मेरी कहूँ। जैसे हम विदेश में जाते हैं, यहाँ से लैपटॉप ले जाते हैं, माना यहाँ से कोई भी चीज ले जाते हैं तो पासपोर्ट में लिखवा के लाते हैं, ऐसे ही नहीं वापस ला सकते हैं। भाई हमें भारत से लेकर के गया तो लिखना पड़ता है कोई ऐसा ऐसी चीज कि मैं यहाँ से लेके जा रहा हूँ। तो जब वापस आएंगे तो अगर दिखाएंगे भाई पासपोर्ट में लिखा हुआ यहीं से ले गया था। तो आत्मा तो जब परम धाम से आई थी तो शरीर भी लाई नहीं थी साथ में, वो तो यहीं मिला। जब जाएगी तो शरीर भी साथ नहीं ले जाएगी, वस्तु चीजें तो छोड़ो। तो शरीर के लिए भी मेरा कहना ये भी चोरी के खाते में जाएगा, वस्तु तो दूर की बात है, वो भी मेरा नहीं है। जब आत्मा का समय होता है जाने का तो शरीर से पूछेगी क्या मैं जाऊं? कहीं तो नींद में चले जाते, बेचारों को पता भी नहीं चला होगा कि मैं तो गया नींद में। तो हम देखें ये चोरी है। फिर तीसरी बात, कई कहते बहन जी आज तक मैंने किसी को दुख नहीं दिया, कष्ट नहीं दिया, किसका गला नहीं दबाया, किसकी कभी ऐसे हत्या नहीं की, बहन जी मैं तो बहुत डरता हूँ ये सब पाप से। अच्छी बात है, तो बहुत अच्छा काम करते हैं आप, लेकिन अपनी आत्मा को हम कितना दुख देते हैं, कभी ये भी सोचा है? अपनी आत्मा को कैसे दुख देते हैं? ये अंतर यंत्र अपनी आत्मा की हत्या करते हैं। वैसे आत्मा की हत्या होती नहीं है, शिव हत्या होती है। किसी ने प्रश्न भी लिखा मुझे क्या कि आपने बहन जी आत्मा की तो बात कही पर जीव की बात नहीं लिखी है, बताई है कुछ? जीव आत्मा कहते हैं। तो जब हम जीव आत्मा कहते हैं, माना प्रकृति के अंदर भी चेतनता है, वो प्रकृति की चेतनता, वो जीव कहेंगे, वो निर्जीव बन जाता है। पर आत्मा तो सदा ही चेतन है, जिसमें मन बुद्धि संस्कार है, प्रकृति की अपनी चेतनता है। पेड़ पौधों में वो चेतनता है, वो प्रकृति की चेतनता, एक एक टिश्यू में, एक एक सेल में, कोशिका में भी चेतनता है। ये बढ़ता है, ये टूटता है, ये निकलता है, हाँ फैलता है, ये सब हम बॉटनी में, जूलॉजी में पढ़ते हैं। वो चेतनता अलग है, लेकिन आत्मा की चेतनता माना जिसमें सोचने की शक्ति हो, समझने की शक्ति हो, कर्म करने की शक्ति हो, ये आत्मा की शक्ति है। तो इसलिए वास्तव में हम अपना खून कैसे करते हैं, आत्मा क्या खून, जैसे आत्महत्या होती नहीं, लेकिन मन कुछ और कहता है, बुद्धि कुछ और कहती है, संस्कार कुछ और कहते हैं, इंद्रियों की डिमांड कुछ और है, और बुद्धि कहती है नहीं है, ये गलत है, क्योंकि अंतरात्मा तो अपने असली रूप में स्वच्छ है, पवित्र है। जैसे दाग जरा सा लग गया तो पता चलेगा सफेद वस्त्र पर, तो जरा सा बुरा विचार आता है तो मन खाता है, अंदर में कहते ना मन खाता है, अंतरात्मा की आवाज आती है ये गलत है, क्योंकि आत्मा तो अपने असली रूप में तो बड़ी शुद्ध है। इसलिए मन खाता है कहते हैं, परंतु मन बुद्धि का जो संकेत है वो न सुन करके इंद्रियों के आकर्षण में चला जाता है, और फिर अंदर ही अंदर डर लगता है, क्योंकि गलत काम किया तो डर तो लगेगा। कल दादी ने बताया ना कि डर क्यों लगता है, क्योंकि गलत काम करते हैं, अंतरात्मा जानती है गलत है, तो इसीलिए वो भी हत्या हो गई अपनी आत्मा की। आत्मा को कमजोर बना रहे हैं हम, शक्तिशाली नहीं बना रहे। तो इसलिए शिव बाबा कहते हैं कि हमने द्वापर से लेकर के ये विकारों के वश होकर के पाप का खाता जोड़ा। ये जितने भी विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष नफरत वैर दुश्मनी हेरा फेरी छल कपट निंदा चुगली बेईमानी, ये सब पाप के खाते को बढ़ाते हैं, और उसका परिणाम हमें मिल रहा है। क्या परिणाम मिलता है? तन के अनेक रोग, ये हमारे कर्म का फल है। मन में अशांति, धन की खींचातानी। धन बुरी चीज नहीं है, कई लोग तो समझते धन भी माया है, ये शरीर माया है, बाल बच्चे माया है, माया 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 कहते हैं। शिव बाबा कहते नहीं, ये माया नहीं है, धन तो सुखदाई है, धन की देवी लक्ष्मी है, उनकी तो पूजा होती है, तो माया की पूजा होती है क्या? नहीं, धन तो सुखदाई है, धन नहीं होगा तो खाएंगे कहां से, रहेंगे कैसे, मकान रोटी कपड़ा मकान तो चाहिए ना। पर धन माया कब बन जाता है? जब उसमें लोभ पड़ जाता है, और लोभी व्यक्ति तो कंगाल है, चाहे कितना भी करोड़पति क्यों ना हो, वो करोड़ किस काम के अगर उस धन का सही सदुपयोग नहीं होता है, केवल तिजोरी में डाल के रखने के लिए तो नहीं है ना धन, उसका उपयोग चाहिए, और इतना है फिर भी और चाहिए, किसके लिए चाहिए, सात पीढ़ियों तक खिलाना है इसलिए चाहिए, परंतु सात पीढ़ियों के लिए भी जमा कर देंगे तो भी लोभी व्यक्ति संतुष्ट नहीं होगा। वो मिसाल सुनाते ना कि एक लोभी व्यक्ति था, उसने अपने मुनीम से पूछा कि कितना धन है, अब रोज रोज यही पूछे कितनी संपत्ति है। तो एक दिन मुनीम जी ने कहा, क्यों साहब आप चिंता करते हो, आपके पास तो इतना धन है जो सात पीढ़ी खा सकती है, चिंता मत करो। तो कहता है, अच्छा फिर आठवीं पीढ़ी का क्या होगा, आठवीं पीढ़ी का क्या होगा, उसकी चिंता लग गई अभी से ही, आठवीं पीढ़ी का। अरे धन जाने में देर लगती है क्या? जब भुज में भूकंप आया था तो अगले दिन अखबारों में आ गया, भूकंप आई ना रात को आया, जब लोग डर के मारे मकानों से बाहर आ गए और मकान गिर गए, तो अगले दिन अखबार में आया करोड़पति रोडपति बन गया, करोड़पति रोडपति बन गया, क्योंकि रात को भाग आए मकानों से डर के मारे, इतनी ठंडी थी, ठिठुर रहे हैं, कंबल ओढ़ने के लिए भी नहीं, और वो करोड़ों वो मलबे के अंदर ढेर पड़ा हुआ है जहां भी छिपाया होगा, क्या फायदा, फायदा हुआ क्या? तो इसलिए शिव बाबा हम बच्चों को क्या कहते हैं कि हे आत्माएं, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार यही पाप के या दुख के कारण हैं। तो अब शिव बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे ये सारे जितने भी विकार हैं, एक की बात नहीं है, इनके वशीभूत होकर हमारे कर्म पाप के खाते में गए हैं और परिणाम स्वरूप हम उसका दुख भी भोग रहे हैं, यानी कि नहीं भोग रहे हैं, ये परिणाम है। तो पाप की परिभाषा क्या है? जो भी कर्म देह के अभिमान से शुरू होता है और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार विकारों के वशीभूत होकर होता है, जिसमें स्वार्थ भरा हुआ है, मेरा ही भला हो, दूसरा जाए जहन्नम में, मेरा क्या जाता है, मेरा कल्याण हो, भला हो। कई तो ऐसे होंगे कहेंगे मेरा भले भला न हो पर दूसरे का भला नहीं होने दूंगा, ये फिर और गए गुजरे। एक का कहावत है भाई जियो और जीने दो, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि न जीना है न जीने देना है, दूसरे को मार के फिर खुद को भी मार डालेंगे, उनको पता है मैं उसको मार दूंगा तो मैं तो पकड़ा जाऊंगा, मुझे भी जेल में डालेंगे, उम्र कैद मिलेगी या फांसी मिलेगी, तो मैं भी तो बचूंगा तो नहीं, चलो खुद को ही मार डाला। अच्छा खुद को मरना ही था तो दूसरे को क्यों मार के मरे, तुम खुद ही मर जाओ ना। अगर मरना ही है, ये लक्ष्य रखा है तो दूसरे को मार के क्यों मर रहे हो, कितना बड़ा पाप। एक तो मारने का पाप, फिर आत्महत्या उसका बड़ा पाप, और आजकल तो उनसे भी भयंकर पाप क्या हो रहे हैं, ह्यूमन बॉम्ब, मनुष्य एक बॉम्ब बन जाता है और जाकर के मारता है। तो केवल वो तो उसको तो पता है मैं तो मर जाऊंगा क्योंकि अपने पेट पर बॉम्ब बांधा, वो तो मर ही जाना है, उसके तो चिथड़े निकल जाने हैं, टुकड़े टुकड़े हो जाने हैं, उसको पता है, उसलिए वो जानबूझ करके करता है, मैं तो मुझे तो मरना ही है। पर अकेला क्यों मरो, साथ में 10, 20, 50, 1000, 10,000 सबको साथ में लेकर मरो ना। तो बताओ कितना पाप का बोझा चढ़ता होगा उनके ऊपर, सोचो। कई हमको पूछते हैं कि बहन जी कोई अगर एक्सीडेंट होता है, कोई मर्डर होता है, किसी कोई आत्महत्या करता है तो क्या वो आत्मा भटकती है? हम कहते हैं ऐसे भटकती नहीं है, ये तो आत्मा का जब समय पूरा होता है तो शरीर को छोड़ना ही है, तो एक जगह से शरीर छोड़ती है, दूसरी जगह उनका गर्भ तैयार है। ये बना बनाया ये संसार का एक नियम है, 4.5 महीने का गर्भ होता उसमें आत्मा प्रवेश होती है, माँ को पता चलता है कि अब जैसे आत्मा प्रवेश हुई बच्चा हिलने लगता है तो पता चलता है, क्योंकि 4.5 महीने करीब 18 सप्ताह के बाद पता चलता है कि उसमें जैसे जान आ गई, हार्ट बीट चालू हो गया, वो तो शुरू से होता है लेकिन वो चुरपुर होने लगती है, माँ को पता चलता है ये आत्मा की प्रवेशता हुई, पहले केवल जीव ही तैयार हो रहा है। तो जहाँ आत्मा ने शरीर छोड़ा उसको तुरंत दूसरा शरीर चाहिए, जैसे एक मकान अगर टूटा परंतु तोड़ेंगे तब जब दूसरा मकान तैयार होगा तब तो पुराने को तोड़ेंगे ना, ऐसे तोड़ दिया तो रास्ते पर भटकेंगे क्या, तो शरीर भी तो मकान है ना। तो नॉर्मल केस में आत्मा जहाँ शरीर छोड़ती है तो दूसरा शरीर उनके लिए तैयार है। फिर मान लो अगर हार्ट फेल हो गया, कोई बीमारी से मरा, चलो एक्सीडेंट भी हो गया, ये उनके लिए निश्चित था, वो मौत उसी प्रकार से निश्चित थी, एक बार बहाना बन गया कि मर्डर हुआ या सुसाइड किया या एक्सीडेंट से मरा, ये एक बहाना था। एक बताते हैं कि एक व्यक्ति था, उसको किसी ज्योतिषी ने कहा कि तुम्हारी मृत्यु ना पानी से होगी, तुम पानी के पास नहीं जाना, पानी तुम्हारी मौत का कारण बनेगा, ये तुम्हारे जन्म पत्री में लिखा हुआ है। तो बेचारा डरता ही रहता था, कभी तालाब के पास भी न जाए, नदी सागर तो दूर, पानी से डरना, पानी से मेरी मृत्यु होगी। लेकिन जिस दिन लिखा था मरना तो पानी के पास वो नहीं गया, पानी उसके पास आ गया, बाढ़ आ गई। बाढ़ आ गई तो गया। उस पर भी कई चुटकुले कई प्रकार के बनाते। तो कहने का भाव क्या है कि वो तो निश्चित है, लेकिन भटकती कब है आत्मा? जब ऐसा कोई कुकर्म किया है, ऐसा पाप कर्म किया है, अनेकों को दुख दिया है, वो आत्मा को तुरंत छोड़ा नहीं मिलेगा, भटकेगी जरूर। ये नहीं कि भले नेचुरल डेथ में ही शरीर छोड़ाओ, परंतु वो जरूर भटकेगी कि दुख बहुत दिया है। और जो ह्यूमन बॉम्ब बनते हैं वो तो उनको तो कहां तन मिलेगा, कितनों की बद्दुआएं ली होगी, तो वो तो जरूर भटकेगी, बहुत दुख सहन पाएगी। और उसका पाप का घड़ा तो कितना भर जाएगा, आप सोचिए। एक मिसाल हमने कहीं पढ़ा था कि एक छोटे बच्चे को ब्लड कैंसर हो गया, ब्लड कैंसर, बच्चा और ब्लड कैंसर, तो उसको हिप्नोटिक रिग्रेशन में ले गए, पूर्व जन्मों में ले गए। तो जब पूर्व जन्मों में ले गए तो उसने पूर्व जन्मों की जैसे बातें बताई, और एक जन्म में उसने किसकी हत्या की थी, उसका खून बहाया था, तो खून बहाया तो नेचुरली कुछ तो इसका फल मिलेगा ना। तो इस जन्म में ब्लड कैंसर, तो ब्लड को बार बार बदलते रहना, कुछ तो कर्म किया होगा ना, ऐसे ही थोड़ी किया है, ऐसे थोड़ी हुआ है, यानी ये कर्म का खाता है। और उसके परिणाम स्वरूप हम देख रहे हैं पाप का बोझा सिर पर चढ़ाते जा रहे, चढ़ाते जा रहे हैं। फिर कहेंगे हे भगवान इतना दुख हमें क्यों दिया। अरे भगवान क्यों दुख देगा, हम तो अपने कर्मों से दुखी हो रहे हैं। तो पहला कर्म है पाप कर्म जो हम सब कर रहे हैं। फिर कई कहते भगवान ने तो ये विकार बनाए, ये बिल्कुल गलत है हमारी सोच कि भगवान ने बनाया, भगवान ने ये विकार नहीं बनाए, ये तो हमारी कमजोरी है, ये विकृति है। जैसे मकान मालिक अपने मकान लिए मकान बनाएगा, अपने बच्चों के लिए बनाएगा, यहाँ कई बिल्डर बैठे होंगे अपने अपने लिए अपने बच्चों के लिए मकान बनाते हैं, तो कोई कमजोर मकान थोड़ी बनाएंगे, बनाएंगे क्या, कैसा मकान बनाएंगे। चलो दूसरों के लिए बनाए तो हो सकता है कमजोर बना लिया, चलो मेरे को तो रहना नहीं है, पर अपने लिए बनाएंगे तो कैसा बनाएंगे, बड़ा मजबूत बनाएंगे। लेकिन वही मकान 50 साल 100 साल 200 साल के बाद कमजोर होगा या नहीं होगा, कि उतना ही रहेगा जो 200 साल पहले था। क्योंकि ये प्रकृति का नियम है कि हर चीज सतो से रजो से तमो होती है, हर चीज प्रकृति की। तो मकान तो कोई बड़ी चीज थोड़ी है, ये शरीर भी देखो, बचपन जवानी बुढ़ापा अंतर तो पड़ता है ना। तो प्रकृति के इस नियम में को हम समझते हैं, तो इसी प्रकार ये विकार ये कोई अनादि अविनाशी नहीं है, ये कमजोरी है। ये कैसे कमजोरी आई, हम आत्मा खुद को भूल गए, और भूलने से तो कहते हैं जो खुद को भूला तो उसको लगा माया का गोला। ये माया का गोला क्यों लगता है, क्योंकि खुद को भूल गए। इसलिए ये विकार कोई अनादि अविनाशी नहीं, ये द्वापर युग से प्रवेश होते हैं। सतयुग त्रेता में कोई विकार नहीं थे, द्वापर युग में आत्मा खुद को भूल गई। और उसके कई उदाहरण शास्त्रों में हैं, कई धर्मों में हैं। क्रिश्चियनिटी में बताते हैं कि भगवान ने एडम और ईव को पैराडाइज में भेजा और उनको कहा कि आप पैराडाइज का स्वर्ग का जितना सुख लेना चाहो लो, लेकिन एक उनको सावधानी दी कि एक फॉरबिडन फ्रूट फल का ये खाना नहीं, बस जो चाहिए बाकी सब कुछ आप करो। तो कहानी में बताते हैं कि ईव को आया ये क्यों भगवान ने हमें मना किया है, तो एडम को कहा कि जाओ ले आओ। अब ले आया ईव के कहने पर और खाया, और जैसे ही खाया तो उनको संकल्प आया, काम वासना का संकल्प आया, क्योंकि वो फल खाया भगवान ने मना किया था, पर भगवान की अवज्ञा की, तो फल खाया तो वासना के वशीभूत हुए। तो भगवान ने दोनों को आदेश दिया, क्या आदेश दिया, नारी को आदेश दिया, ईव को आदेश दिया, ये क्रिश्चियनिटी में आता है कि आदेश दिया कि आप 9 मास गर्भ में बच्चे को रख करके कष्ट भोगो और बच्चा पैदा करो कष्ट के साथ। और एडम को श्राप मिला कि उसको उसकी पालना करने के लिए खून पसीना बहाओ, मेहनत करो, ये दोनों को श्राप मिल गया। यानी इसके पीछे एक राज है कि सतयुग त्रेता में हम आत्माएं तो स्वर्गीय सुख का अनुभव कर रहे हैं, पर ये विकार कहाँ से शुरू हुए, कौन सा फॉरबिडन फ्रूट या नहीं खाना है, ये देह का अभिमान, पर हमने खा लिया। कई कहते क्यों खाया फिर, परंतु ये भी प्रकृति का नियम है कि जन्म लेते गए शरीर छोड़ते गए, लेते गए छोड़ते गए, तो वो भी समय आता है जब आत्मा भूल जाती है खुद को, ये भूल भुलैया का खेल है। भूल भुलैये में आत्मा भूल गई, दो युग के बाद भूली है। सत्यु त्रेता में आत्मा को पूरा ज्ञान है अपना, और उस ज्ञान के आधार पर जन्म और मरण, देह लेना देह छोड़ना, ये भी उनके वश में है। देवताओं को अमर कहते हैं। क्यों अमर कहते हैं? देह तो छोड़ते हैं जरूर, अगर देह नहीं छोड़ी होती तो आज होते वो देवताएं। लेकिन क्यों अमर कहते हैं उन्हें? इसलिए क्योंकि मृत्यु पर उनकी विजय है, अर्थात देह छोड़ना भी उनके हाथ में है। आज तक भी उसका सैंपल है, कई ऐसे योगी लोग हैं, अपनी योग साधना से वो खुद बताते हैं कि फलाने दिन फलाने समय फलाने तारीख मैं ऐसे देह त्यागूंगा, और सचमुच सबके सामने छुट्टी लेते हैं, और छुट्टी लेते लेते आत्मा उड़ जाती है। माना देह त्याग भी उनके अपने कंट्रोल में था, देह त्याग किया। भीष्म पितामह के लिए बताते हैं कि उसने कहा कि जब उत्तरायण में सूरज जाएगा तब देह त्यागेगा, नहीं तो इतने सारे उनको तीर लगे हुए थे पर मृत्यु उनके कंट्रोल में थी। यानी ये कहने का भाव है कि सत्युगी दुनिया में देह लेना भी सुखदाई, देह छोड़ना भी सुखदाई, क्योंकि आत्मा को ये ज्ञान है कि शरीर तो पुराना है, कपड़ा है, वस्त्र है, इसको त्यागना है। पुराना वस्त्र मैला वस्त्र त्याग करके नया वस्त्र मिल रहा है तो दुख होगा क्या? दुख होगा। अब मेरे वस्त्र पुराने हो गया, नया वस्त्र रखा है तैयार, नहा धो करके मैं नया वस्त्र पहनूंगी ना, पुराने को तो मैला है, बांस आ रही है, पसीना है, तो निकालने में खुशी होगी कि उसी को ही उड़कना है, क्या करेंगे? तो वहां भी आत्मा को साक्षात्कार होता है कि मुझे नया चोला मिल रहा है। इसलिए डर की कोई बात नहीं, जन्म मरण क्या है, चोला लेना चोला छोड़ना, इसमें डरने की क्या बात है, दुखी होने की क्या बात है? लेकिन क्यों दुखी होते हैं? क्योंकि मोह है, वस्तुओं में व्यक्तियों में मोह है। अब शिव बाबा कहते हैं अगर ये ज्ञान मिल गया मैं आत्मा हूँ और आप भी एक आत्मा हैं, तो भाई भाई है। बहन भाई की बात कल कर रहे थे तो हम कहते हैं आजकल तो बहन भाई में भी काम वासना की दृष्टि जाती है। बाकी तो बात ही छोड़ो, पति पत्नी चलो उनको लाइसेंस मिल गया, लेकिन भाई बहन के प्रति भी काम वासना की दृष्टि मिल जाती है। एक माता पिता जवान बेटा बेटी को घर में छोड़ के आते हैं तो भी डर लगता है कि पता नहीं क्या होगा। जवान बेटा बेटी है, भाई बहन होते हैं ना। अरे बाप और बेटी, उसका भी डर लगता है कि पता नहीं बाप बेटी को क्या करेगा। इसको सेक्सुअल अब्यूज कहते हैं। तो इसीलिए शिव बाबा कहते हैं कि हे बच्चे, इन विकारों के वशीभूत इतने पाप हो गए हैं, अब पाप का घड़ा भर गया है, फूटेगा या नहीं फूटेगा कि भरते ही रहना है? आखिर तो फूटेगा, अति का अंत तो आएगा। तो सत कर्म की क्या परिभाषा है? पाप कर्म के बिल्कुल विपरीत। सत्कर्म अर्थात जो भी कर्म आत्मिक स्थिति में किए जाते हैं, आत्मिक स्थिति में परमात्मा की स्मृति से, मैं तो निमित्त हूँ, शिव बाबा की शक्ति मुझे मिल रही है, दृष्टि में भी आत्मीयता है, सब आत्माएं हैं, सब एक शिव पिता की संतान है। भाई बहन तो क्या, हम कहते आत्मा आत्मा भाई भाई है। आत्मा भाई भाई क्यों? कई कहते बहन बहन क्यों नहीं, भाई भाई क्यों कहते हैं? पर भाई भाई का मतलब है वारिस, अधिकारी। हम परमात्मा के बच्चे, परमात्मा के गुण शक्तियां, उनके रचना स्वर्ग, उनके वारिस है हम। तो वारिस होने के नाते जैसे बेटा वारिस कहलाता, भाई बेटी के लिए तो कहेंगे ये पराया धन है ना, पर बेटे के लिए क्या कहेंगे, ये वारिस है। तो हर आत्मा वारिस है अपने पिता परमात्मा के। तो जब ये हमें समझ मिल जाती है और सबको उसी आत्मिक दृष्टि से देखते हैं, आत्मिक वृत्ति है, भावना बहुत ऊंची है, और विकारों रहित है, सबके कल्याण के प्रति है, आत्मा का कल्याण हो उसमें, ये भावना है, निस्वार्थ भाव है। और उस भावना से, उस भाव से तन से सेवा, मन से सेवा, धन से सेवा, अपने समय से सेवा, श्वास से सेवा, संकल्पों से सेवा, अपनी कलाओं से सेवा, ये सेवा सबके प्रति, ये सेवा की भावना हमारे सत्कर्मों को